તારીખ 9-10-1993 શ્રી મદ્રાસ ચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32
મોહનલાલજી
તો ગુજરાતી માં લખે છે, લિપિ હિન્દી લખે છે, ગુજરાતી માં કાગળ લખે છે, ગુજરાતી માં એનું વાંચન ગુજરાતી શાસ્ત્રો નું ગુણ છે. ઓમ સંજ્ઞા મુમુક્ષુ જીવ કે લીએ બહુ પ્રયોજનભૂત મુદ્દા હૈ, ક્યોંકિ અનંતકાલ ધર્મ પ્રાપ્તિ ને કોઈ બાધક કારણ કોઈ પરિણામ મેં રહા તો ઓક સંજ્ઞા વાલા ઓર લોક સંજ્ઞા વાલા. લોક સંજ્ઞા તો બહુ હલકે પરિણામ હૈ, બહુ મેલે પરિણામ હૈ, વો તો બડા બાધક કારણ હૈ, લેકિન વો તો કોઈ નિકાલ ભી સકતા હૈ, ક્યોંકિ જિસકો લોગો સે પરિચય નહીં હૈ, ત્યાગી હોતે હૈ, લોકો સે કોઈ અપેક્ષા નહીં હોતી હૈ, જો ત્યાગી હોતે હૈ લોકો કો લોકો સે અપેક્ષા નહીં હો, યા એસે ભી કોઈ પુણ્ય યોગ સે બડી પ્રેસ્ટીજ હો તો ભી કોઈ લોકો પે લોકો કી અપેક્ષા નહીં હો, લેકિન ઓક સંજ્ઞા નિકાલના વો એક પુરુષાર્થ કા વિષય હૈ, ઉસકે લીએ તો પુરુષાર્થ ચાહીએ, પ્રયોગ ચાહીએ, દોનો પ્રયોગ ઓર પુરુષાર્થ દોનો એક હી પરિણામ કે અલગ અલગ પહેલુ હૈ, પરિણામ એક હી હૈ, જો પ્રયોગ કે પરિણામ હૈ ઉસમે પુરુષાર્થ થોડા બહોત હોતા હી હૈ, પુરુષાર્થ હોતા હૈ તો પ્રયોગ બનતા હૈ, વહાં તક વિચાર ચલતા હૈ, વિચાર ચલતા હૈ વહાં તક ઓક સંજ્ઞા રહેતી હૈ.
વૈચારિક પ્રક્રિયા કો પુરુષાર્થ કા નામ
નહીં દે સકતે, નહીં દે સકતે, इसलिए नहीं दे सकते कि उसमें कई प्रकार के जो दोष है, गलती है, वो संभव है. जैसे कि तत्व का विचार करने वाले को ओक संज्ञा में कल्पनाएं होती हैं, वो एक भी प्रयास है. वजन जितना देना चाहिए, जितना उठाना चाहिए, उसका जो बैलेंसिंग इम्बैलेंसिंग जो प्रक्रिया है वो भी विचार की भूमिका में वो भी विपर्यास रहता है. मुख्य गौण का मुख्य गौण वाला विपर्यास विचार की भूमिका में क्रम विपर्यास तो प्राय देखने में आता है तीन, और विचार की भूमिका में आधार बुद्धि सुख बुद्धि ये बदलना बहुत मुश्किल है. एकत्व बुद्धि ये टूटती नहीं, तो सभी मिथ्यात्व रूपी है. और राग का जो एकत्व है वो विचार की भूमिका में चालू रहता है, तो इसलिए विचार की भूमिका एक बहुत कमजोर परिस्थिति है मुमुक्षु की, जिसमें खुद को भी फील होता है कि इतना पढ़ा, इतने साल से सुना, इतना किया, हमको क्यों नहीं लाभ होता है, ये कंप्लेन आज के हमारे समय में बहुत सामान्य होगी. क्यों? બહુત મુમુક્ષુઓ કે બહુત ટાઈમ ઇસમાં ગુજરા, કિતને લોગને તો કુટુંબ પરિવાર વેપાર વ્યવસાય છોડ કરકે સોનગઢ મેં ભી નિવાસ ક્યા, આજ વહાં 40 સાલ સે બેઠે વાલા 50 સાલ સે બેઠે વાલા આદમી આપકો સોનગઢ મેં મિલેગા, જિસકો ગુરુદેવ કા પ્રત્યક્ષ સાનિધ્ય મિલા, જિસકો બેંસરી કા ભી યોગ મિલા થોડા બહોત જીતના હો સકે ઉતના, પિછલે 10 સાલ મેં બેંસરી પ્લેટફોર્મ પર આઈ બુદ્ધિ જ્ઞાને કે બાદ, તો એસે એક સે અનેક જ્ઞાનીઓ કા સંગ હોને પર ભી યે કમ્પ્લેન કરેંગે કે ઇતના સાલ હો ગયા કુછ હોતા નહીં, ક્યા કરે, પ્રાપ્ત નહીં હોતા હૈ, ક્યા કરે ક્યા કરે. ઇસકા કારણ ક્યા હૈ કે વૈચારિક ભૂમિકા કી ઓગ સંજ્ઞા गई ही नहीं, कोट संज्ञा चली जा रहे, तो फिर ये तो सम्यक सम्यक की भूमिका आएगी, सम्यक सम्मुख की भूमिका भी आएगी, आएगी ओक संज्ञा का निवृत्ति हो, ये बात तो बहुत मुमुक्षुओं के लिए प्रयोजनभूत है।
विकल्प करते करते ही तो भाई पकड़ आएगी निर्विकल्प अवस्था की, विकल्प का पकड़ पकड़ के धीरे से उसका फिर जोर छू जाएगा, कैसे विकल्प
तो रहेंगे। तो भाव कैसा है द्रव्य का और पर्याय का, द्रव्य तो स्वरूप से ही निर्विकल्प है क्योंकि उसमें तो विकल्प का अवकाश ही नहीं है सामर्थ्य रूप होने से, और पर्याय निर्विकल्प शुद्ध उपयोग के काल में होती है, शुद्ध उपयोग के काल में सम्यक दर्शन के काल में होती है। इसके पहले निर्विकल्प निर्विकल्प भाव कैसा हो इसको अगर समझना हो तो कल्पना करके नहीं, प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकल साइड से ये ज्ञान वेदन है वो निर्विकल।
ज्ञान वेदन की बात
एक महीना से चलता है बराबर
एकदम प्रयोग भी अच्छे आपको विचार भी थ्योरी ने बाद में आ लक्ष्मण
की बात से विचार थ्योरी थी वन स्टेप फर्दर, विचार की थ्योरी आप समझा और क्या, हम लोगों ने तो काफी समय से सब बातों को समझी है इसलिए इसकी चर्चा में मैं लंबाता नहीं, क्योंकि ये परिचित है हम लोग इस विषय से, थियोरेटिकल विषय से हम लोग परिचित है, नए नए को समझाना पड़े कि भाई इसका ये थियोरी है, लेकिन हम लोगों को उसकी जरूरत नहीं। तो प्रैक्टिकल साइड को फिर किस तरह से हम अंगीकार कर सकें इसके लिए जितनी चर्चा करें और इस विषय को जितना एलोबरेट करें उतना अपने लिए काम करने में सुविधा होगी।
तो भाई ये तो प्रैक्टिकल थ्योरी में आपके लिए अवलोकन की बात करी पाछी आयु मिल जाए
कार्य पद्धति छे, कार्य पद्धति नो स्टार्टिंग अवलोकन छे।
એટલે પેલા જે વિચારધારા હતી
શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય સત્સંગ વિચારણા, વિચારણામાં પછી ઊંડું ચિંતન મનન, બસ અહીંથી આગળ નથી જવાતું, એ વિચારની જ પોઝિશન છે, સ્થૂળ વિચાર પછી સૂક્ષ્મ વિચારણા લ્યો તો એનું ચિંતન મનન આપણે કહી શકીએ। આ બધા વિચારના સ્ટેજથી એક સ્ટેપ હવે આગળ ચાલવું હોય તો અહીંથી આગળ ચાલવામાં અવલોકનમાં જવું જોઈએ, અહીંથી પ્રેક્ટિકલ સાઈડ શરૂ થાય છે, એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડમાં જેટલું ડેવલપમેન્ટ પ્રેક્ટિસ કરો એટલું ડેવલપમેન્ટ, પ્રેક્ટિસ કરો એટલું ડેવલપમેન્ટ, તમે જેટલી ગાડી વધારે ચલાવો એટલી તમને સ્કિલફુલનેસ ફાવે, પરિણામ તો અટકતા નથી
તમને જેવું લાગે નહી,
કોઈ જીવ પરિણામ તો અટકી જાય કઈ બરાબર છે, તો પછી તમારું ઓબ્ઝર્વેશન અટકવાનો ક્યાં સવાલ થવું,
સાથે સાથે ચાલે છે ભાઈ, કરે છે આ સાંભળતી વખતે આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ તો સાથે સાથે ચાલે છે ભાઈ, એકદમ ચાલે છે, પરિણામ તો અટકતું જ નથી,
અને ટ્રાય અત્યાર સુધીમાં આધ્યાત્મિક વિષયમાં તમને જે રસ પીડ્યો હશે એના કરતા એમ કહી શકું કે નવી દુનિયામાં તમે આવીને એનો રસ લેશો, એની જાત બીજી છે અને એનો રસની માત્રા બીજી છે, એની ડિગ્રી પણ બીજી છે, એ વિષય એ ફિલ્ડમાં તમે પ્રવેશ કરો એટલે એક નવી જ લાઈન હાથમાં આવે છે, અને તમે ઊંડા ઉતરતા જ જાઓ, ઊંડા ઉતરતા જ જાઓ, ભણ્યું એનું તળિયું જરા બહુ ઊંડું છે જેટલા ઊંડા ઉતરતા જશો એક ઊંડાણમાં ભગવાન ની મૂર્તિ બેઠી છે, એ મૂર્તિ ના દર્શન થાય એમ છે.
અને ભાઈ યથાર્થ
આ ઊંડા ઉતરવાનું આ એક જ ચેનલ છે, બીજી ચેનલ નથી. ઊંડા ઉતરવાનું ધી ઓન્લી વન ચેનલ. એક જ કાર્ય કરવાનું છે. લાંબા લાંબા વિચારો માણસ ને મગજમારી વધી જાય શું, અને વિકલ્પ વૃદ્ધિ થઈ પણ જાય. આમાં એવું કઈ નથી. તમે સેવા કરો. શ્રીમદજી લખે છે ને, સમ્યક દર્શન થયા પછી 165 નંબર ના પત્ર માં, જગત કો ઓર જગત કી લીલા કો બેઠે બેઠે મુફત મેં દેખતે હૈ. બેઠા બેઠા જગત ને જગત ની લીલા ને મફત માં જોઈએ છે. કેમ કે એક બાજુ તટસ્થ થઈ ગયા, એક બાજુ સાક્ષી ભાવે ઉભા રહી ગયા. કોઈ પદાર્થ સાથે રાગ કરવો નથી, કોઈને સાથે દ્વેષ કરવો
નથી.
અહીંથી શરૂઆત થાય છે, પ્રેક્ટિસ અહીંથી શરૂ થાય છે. પછી તો વિષય ઊંડો છે, એના સ્ટેજ પણ ઘણા છે, પણ એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડમાં આવીને ચર્ચવા જેવા છે, વિચારવા જેવા છે. અને નીતર ન ચર્ચાનો ન વિચારે તો તમે આગળ વધે જ જશો. એક ફાયદો શું છે એનો, કે વિચાર અને વાંચનમાં તમે ગમે એટલું વિચાર્યું અને વાંચ્યું હોય તો પણ તમને પૂરું સમાધાન નહીં આવવાનું, અને અમુક પ્રશ્નો ઊભા રહેવાના. પછી તમે એના વિશેષજ્ઞ કે પાસ જા કરકે પૂછો કે ઉસમે ક્યા હૈ, ઉસમે ક્યા હૈ. યહાં એક ઓર ફાયદા ઓર એક સુવિધા બઢતી હૈ કે આગે કા બાત પ્રેક્ટિકલ સાઈડ મેં ખુદ હી કો પતા ચલતા હૈ કે કૈસે કામ કરના, કૈસે કામ કરના, પૂછના નહીં પડતા હૈ. 99% નહીં પૂછના પડતા. જૈસે આપ સાઇકલ પર બેલેન્સ રખને કે લીએ ટ્રાય કરતે હો, પ્રેક્ટિસ કરતે હો, તો કૈસે બેલેન્સ રખના વો પ્રેક્ટિસ સે હી તુમ સીખતે જાતે હો. ફિર ઇસકે લીએ ટીચર નહીં ચાહીએ. કૈસે બેલેન્સ રખના વો બાર બાર ગિરને સે ભી, જીતના પ્રેક્ટિસ કરોગે, જીતના ટ્રાય કરોગે, ઉતના બેલેન્સ રખને કા તુમકો વો
બરાબર સુર બહોત છે.
હા, કમાન્ડ કંટ્રોલ, બેલેન્સિંગ કા કમાન્ડ ઓર કંટ્રોલ અપને આપ હોતા જાયેગા. કૈસે કરના વો પ્રશ્ન નહીં રહા, ફિર વો પ્રેક્ટિસ ઇટસેલ્ફ વો સિખાતી હૈ. તીન આત્મ સ્વરૂપ કો વાસ્તવિકતા સે દૂર રખને મેં તીન દોષ હૈ, યાને કાલ્પનિક રૂપ સે ગ્રહિત મિથ્યાત્વ મેં લેને જાને લે જાને વાલી એ તીન દોષ હૈ. કલ્પના મેં ગ્રહિત મિથ્યા ઉસમે લે જાયેગા. અસત્સંગ તો ચીજ એસી હૈ કે જિસકો અસત્સંગ કી રુચિ હૈ ઉસકો સત્સંગ કી રુચિ નહીં, તો આત્મા કી રુચિ તો હોગી કહાં સે, આયેગી કહાં સે. જિન કારણો મેં ઉદાસીન હુએ બિના, એ તીનો કારણો મેં ઉદાસીન હુએ બિના યાને નિરસ હુએ બિના, નિસત્વ એસી લોક સંબંધી જપ્ત પાદી ક્રિયા કૈસી હૈ. યે જો સંપ્રદાય મેં જો જપતપ કી ક્રિયા હોતી હૈ, યે કૈસી બતાઈ હૈ, લોક સંબંધી હૈ. સંપ્રદાય મેં સબ કહતે આપને કિતના ઉપવાસ ક્યા, એક ક્યા કરો કે દિનો મેં તીન ક્યા, પાંચ ક્યા, દસ ક્યા, કિતના ક્યા, ક્યાં ક્યા, પંદરા ક્યા, મહિના ભર ક્યા ક્યા, એ સબ લોક સંજ્ઞા કા વિષય બની જાતા હૈ. કૃષ્ણ ક્યા ક્યા
નિગમ સંપ્રદાયમાં હોય ને પાસ કરે તો લોક સંજ્ઞા આવી ગઈ.
लोगों की नज़र में उसका दिखावा करना। भाई मुंबई से आए हैं तो कहते हैं कि अपने यहाँ बिल्कुल चालू हो गया है, अपने मंडलों में अपना मंडलों में लोग उपवास करने लगे हैं और उसका बहुमान होने लगा है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जिसको कहता है अपने सर्कल में पूरा एडवर्टाइज कैसे करना। देखो मैंने उपवास किया है तो मेरे परिवार की ओर से सभी परिवारों में कुछ चीज़ बांटना लानी जने अपने कैसे हिंदी मसू कहता से पता नहीं हर एक को क्या देना एक एक चीज देना
भेंट
हमारे लाने कैसे हाँ भेंट भेंट लानी है किसे आपसे भेंट देते हैं तो क्या है मेरे परिवार में से 150 परिवार में भेंट दीजिए तो जैसी संपन्नता है अच्छी हो तो चांदी का आर्टिकल हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अच्छा उसमें लिखा हुआ हो फलाने फलाने ने 10 उपवास किया इसके उपलक्ष्य में ये चीज भेंट दी गई है ये अपने वहाँ चालू हो गया है। गुरुदेव के संप्रदाय में ये बात आज बिल्कुल अन्य संप्रदाय जैसी चलती मालूम पड़ती है। ये बात बराबर हमारे यहाँ कुछ नए नए श्वेतांबर संप्रदाय के जो भाई लोग आए हैं 5-7-10 परिवार लोग प्रकट करते हैं वो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनको आश्चर्य लगता है। अच्छा आप लोगों में भी ऐसा होता है हमारे यहाँ तो होता ही था इधर भी इधर ऐसा होता है वैसा का वैसा ही है जब तो हम यहाँ गए यहाँ उधर क्यों है ऐसा पूछते हमको ऐसा पूछते तुम बोले क्या करोगे अपना कंट्रोल के बाद में तो वो लोग आश्चर्य उन लोगों का होता है वो चंद्रकांत भाई दीपक भाई थोड़ा प्रश्न करे थे तमारा भी उठाए थे अहिया ही उठावा मिली क्या ऐसा है कि ये चेपी रोग है लोक संज्ञा का अनादि से चेपी रोग है उसको पनपने में देर नहीं लगती। अच्छी बात को प्रचार प्रसार करना हो तो ताकत लगानी पड़ती है। एक वितराग देव का जिन मार्ग का सिद्धांत का प्रसार प्रचार प्रसार फैलावा करना हो तो बहुत बड़ा समर्थ पुरुष चाहिए। एक तो अपने ज्ञान पुरुषार्थ की सामर्थ्य चाहिए दूसरा पुण्य योग चाहिए वरना लोग फेंक देंगे उसको निकाले उसको थका मार करके ये ऐसे बात करता है नहीं चले हमारे यहाँ। रोगियों का जोर है इतना तो रोगियों का जोर है समाज में तो ये बात है तो उस वो तो कालक्रम में बहुत कम लोग पैदा होता है ऐसा कि जिसको पुण्य योग भी हो और पवित्रता का भी योग हो जैसे गुरुदेव जैसे थे तो ऐसा क्रांतिकारी पुरुष कोई नहीं होता है। बाकी तो ज्ञानी को भी छिप के रहना पड़ता है घर में जैसे कृपाल देव रह गए सुगानी जी रह गए बताए नहीं किसी को वो चले जाते अपना काम करके वो आगे चले जाते हैं वो तो बल्ब काल में सिद्धालय में पहुंच जाएंगे दुनिया दुनिया में दुखी 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 होकर के रह जाएगी वो अनंत सुख में सुखी सुखी होकर के रह जाएंगे। ये बात है
संख्या के परिणाम में ऐसा जो है क्योंकि बुद्धिमान है उनको ये समझ में आता है कि इस प्रकार का दिखाव नहीं करना सावधानी रखते हैं प्रचार नहीं हो किसी को ये बात प्रकट नहीं करें ये भीतर ही भीतर खुद को खुद का रस्त पहुंचता है उसको
बहुत उनको ज्यादा अवकाश रहता है उनको तो क्या क्या परिचय हम करते हैं तो परिचय ज्यादा होते तो कहाँ टाइम लेने वाला आता है कि हमको टाइम दो हमको हमारे हमको बात करना है हमको पूछना है हमको फोन करना है तो उसका टाइम तो बिगड़ता है उनको तो अखरता भी है मैं क्या मैं कहाँ टाइम खराब करता हूँ और उनको तो अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है अपने अकेले अपना काम आगे बढ़ाते रहे तो ज़्यादा स्वार्थी होकर के अपना काम कर लेते हैं और इस लाइन में तो जितना ज्यादा स्वार्थ है उतना लाभ अपने आप का यही बात है। बाबू जी मेरे परिचय में आए थे, फर्स्ट टाइम की मैं बात करता हूँ। कुछ हफ्ता भर के बाद हमारी इंटीमेसी बढ़ गई, पहले तो आपस में एक दूसरे को देखे भी नहीं थे, नाम सुने थे, मैंने तो नाम सुना था, वो तो मेरा नाम भी नहीं सुना था। किसी भाई कौन है, हफ्ता भर साथ में रहे तो हमारी इंटीमेसी बढ़ गई। तो एक दिन बोले मेरे साथ, शशि भाई मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस एक वन सेंटेंस, काफी बात हो गई पूरी, मेरा तो ये बंद हो गया, सिलाई होगी होगी। इसलिए वो बात आखिरी 3 साल तक तो वैसे गुप्त रही, 5 साल हम परिचय में रहे, दूसरे 2 साल में क्या हो गए, 17 के साल में मैं और लालचंद भाई परिचय में आए रामनगर के पंच कल्याण में, उन लोग मिले, कुछ चर्चाएं हुई, तो उनका अट्रैक्शन मेरे प्रति बढ़ गया। कैसे कहा, गुरुदेव राजपूत हर साल पधारते हैं, आपको आना है और मेरे यहाँ ठहरने का है, अपन साथ में अट्रैक्शन में जितना भी आपको टाइम हो, 2 दिन 5 दिन साथ में रहेंगे, फिर पर सत्संग रहेगा। तो फिर मैंने एक दफे इनको प्राइवेट में वो बात बता दिया, लेकिन मुझे बोलने का तो मना है, क्योंकि तो हमारी इंटीमेसी बड़ी है, तो प्राइवेट में एक बात बता देता है, एक व्यक्ति है दृष्टि संपन्न है और सत्संग करने लायक, तो मेरे प्रति इनका इतना विश्वास, अच्छा ऐसी बात है, वो जब भी सामने आवे मैंने तो टेलीफोन करके बता देना, मैं सामने आ जाऊंगा। तो पिछले 2-3 साल में वो आते रहे, तो स्टेशन वो तो क्या है, वांछनकार थे हिंदी में, राजकोट के तो वांछनकार थे, फिर आ गया मैंने कहा लोगों ने ये देखा कि लालचंद भाई जो है वो गुरुदेव के 2 व्याख्यान और चर्चा के अलावा किसी विद्वान को सुनने को बैठते नहीं, और इधर गुलाब बेन के पास सुबह दोपहर और शाम तीन घंटे जाते हैं, एक पाव घंटे भी किसके मानते में, रामजी भाई पढ़ते थे, किंचन भाई पढ़ते थे, कोई भी विद्वान थे उस वक्त में, वो 1.5 साल रहे कभी किसी के रामचंद में नहीं, ये गुरुदेव को सुनते थे। लगा ये इनके घर कोई परिचय इनका नहीं है, आगे आपस में उन दोनों का कोई परिचय नहीं, किसी के घर जाए नहीं, किसी विद्वान के घर जाए नहीं, किसी विद्वान को जाहिर में भी सुने नहीं, तो 3-3 घंटा क्यों जाते हैं। तो लोग छिपके छिपके देखने लगे, तो दरवाजा तो बंद करे कोई आ नहीं सके, बारी को का कान लगावे, दीवार पे कान लगावे, क्या बात चल रही है, भीतर में है क्या, हम तो 4 आदमी बैठे, इनके परिवार वाले और हम लोग बैठे, उसमें से वो कौतूहल बढ़ गया, क्यूरियोसिटी, जो वहां तो छोटा सा समाज है, पता चल जाए सबको, सब काना फुसी करने लगे, क्या है ये, क्या है वो, क्या है ये, क्या है, बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ गई। फिर कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों की चर्चा चलती है, ऐसा हमको लगता है कि तुम कोई आध्यात्मिक चर्चा में बैठते हो, उनको भी आना है। फिर एक दो को अलाउ किया, तो फिर तो सबको करना पड़े, फिर वो झमेला हो गया। पिछले 2 साल में चर्चा चले तो 50-60 भाई बहन आकर के बैठ जावे, गुरुदेव का प्रवचन सुने और सीधा लोग यहाँ आकर बैठ जावे, जहाँ भी चर्चा चलती हो वहाँ बैठ जावे। पिछले 2 साल ऐसा हुआ था। फिर तो क्या है, तो लोग चर्चा का विषय बनता है तो सबका एक अभिप्राय नहीं बनता है, वो लगा को बहुत निश्चय की बात चलती है तो निश्चयाभास हो सकता है, लगता है कोई निश्चयाभास जैसा भी हो सकता है, ऐसा कई प्रकार के फिर तो चलने लगी ફિર ભી દ્રષ્ટિ કે વિષય મેં બહુ પહેલું ખોલે હૈ નેચરલ તાકત હૈ પાવર બહુ સામર્થ્ય હૈ ખુલને કા ચોથે ભાવ મેં હમ હમારા વંદન ઉસકો પહોંચેગા હમારા નમસ્કાર ઉસકો પહોંચેગા તો બાત તો ખતમ હોગી વો કિતને આદરણીય હૈ વો બાત તો ખતમ હોગી ગુરુદેવ ઇતના આદર દેતે હૈ તો મુમુક્ષુઓ કે લીએ તો કિતના અધિક આદર હોના ચાહીએ વો કોઈ કહેને કા વિષય નહીં હૈ વો તો કોમન સેન્સ કા વિષય હો જાએ લેના હૈ ઇસમે સબ કુછ યા ચલતા અધિકાર
ચલતા ચલતા હૈ લેકિન ચાલુ હૈ રખી જો ચાલુ હૈ વહી રખી ભી ચર્ચા કરેંગે
આધા ઘંટે મેં થોડા क्या चलती थी बात उन तीन कारणों में उदासीन होकर आगे जो धर्म के क्षेत्र में लोक संबंधी जप तप आदि क्रियाएं हैं वो कैसी है निसत्व है उसमें कुछ दम नहीं है तो दस उपवास कर ले या एक उपवास कर ले कोई कितना भी त्याग कर ले उसमें कुछ दम नहीं है क्योंकि त्याग का स्टैंडर्ड क्या है यथार्थ त्याग किसको कहा जाए कि जिसके विकल्प पैदा नहीं हो वो दो प्रकार से विकल्प नहीं आते एक तो मानसिक दृढ़ता से भी विकल्प नहीं आ सकता है लेकिन वो बात लंबी चलने वाली नहीं है उसमें कोई दम नहीं है निर्विकल्प स्वभाव में निर्विकल्प दशा की बढ़वारी होने से यानी वृद्धि वर्धमानता होने से इस विकल्प की योग्यता मूल में से खत्म हो जाए क्षय हो जाए तब विकल्प नहीं उठे और विकल्प नहीं उठे तो विकल्प आश्रित प्रवृत्ति ग्रहण की नहीं होवे पर पदार्थ के ग्रहण की उसी को जिन मार्ग में त्याग बतलाया है और ये चतुर्थ गुण स्थान में चालू नहीं होता इसका इसकी शुरुआत पंचम गुण स्थान से दूसरी परिमा से होती है पहली तो दर्शन परिमा है तो उसका तो बाहर कोई दिखाव नहीं तो दूसरी तीसरी चौथी ग्यारह परिमा में वो सब बाह्य त्याग चालू होता है तो बाह्य त्याग चालू होता है इसका मतलब क्या कि आत्मस्थिरता और वितरागता इतनी बढ़ी कि वितरागता के सद्भाव में राग का अभाव हुआ राग को मंद भी नहीं किया और राग को दबाया भी नहीं दमन भी नहीं किया और मंद भी नहीं हुआ है मंद होने से और दमन करने से त्याग हो सकता है दो प्रकार से दमन वाली प्रक्रिया तो बहुत खराब है तो जितना दबाया उतना उछल के बाहर आएगा फिर आगे जाकर लेकिन मंद होने में किसी को टेम्पररी त्याग हो सकता है लेकिन वो जिन मार्ग नहीं है क्या तो अन्य मार्ग में भी सब करते हैं वहां भी नग्न दिगंबर होकर जंगल में चले जाते हैं वो कोई मार्ग नहीं है जिन मार्ग है सर जिन मार्ग में तो जैनत्व मैंने सम्यक प्रकार से जीत लिया हो उसी परिणाम को उसी विषय को उसी कषाय को सम्यक प्रकार से जीता वो जैन हुआ वही जिन मार्ग है वो विकल्प नहीं आता है तो उसको त्याग कहते हैं सही त्याग तो वो ऐसा त्याग हुए बिना पहले त्याग करे और त्याग को माने तो गृहित निख्यात में जाता है वो निसत्व क्रिया है ऐसा बोला क्या लिखा है निसत्व ऐसी लोक संबंधी जप तप आदि क्रिया में साक्षात मोक्ष नहीं है परंपरा भी मोक्ष नहीं है मैंने है ही नहीं कहीं मोक्ष का मार्ग ही नहीं है ये ऐसा माने बिना निसत्व असत शास्त्र और असत गुरु कहां से वो सिखा ऐसा त्याग करने का असत शास्त्रों में से सीख लिया, कोई किसी असत गुरु ने उसको सिखाया समझाया। जो आत्म स्वरूप के आवरण के मुख्य कारण है, नुकसान का धंधा है ये। क्या लाभ तो कुछ नहीं होगा मोक्ष मार्ग वाला, लेकिन आत्म स्वरूप के आवरण का मुख्य कारण है, उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना। क्या आत्मा का घात करने वाले ये सब प्रक्रिया और मार्ग है। कृपा जी ने प्रहार किया है तो आकरा लग गया, सब साधु लोगों को विरोध करने लग गए थे, उन्होंने तो बेधड़क जो बात थी परमात्मा की बताई है 449 में पत्र चालस। उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना जीव को, जीव के स्वरूप का यथार्थ निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है, कल्पना में चढ़ जाएगा। स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ तो अनुभव होने का तो सवाल पैदा हो जाएगा।
दर्शन में बहुत प्रबल हो जाएगा,
दर्शन में और
प्रबल हो जाएगा।
हाँ हो जाएगा, नो डाउट। इसी को तो आत्मघाती बोला, आवरण का कारण बोला, दर्शन मोह का ही आवरण सबसे बड़ा है। दर्शन मोह का आवरण सबसे बड़ा है और आत्मा को ये दुख पहुंचाने वाली बात है। घात प्राण का, आत्मघात मैंने आत्मा के प्राण का घात होता है, ज्ञान प्राण का घात होता है, शांति का घात होता है, दोनों बात हो जाए। उन्हें साक्षात आत्मघाती जाने बिना जीव को जीव के स्वरूप का निश्चय होना बहुत दुष्कर है, अत्यंत दुष्कर है। तो जैसे लिखा है, ज्ञानी पुरुष के प्रगट आत्मस्वरूप को कहने वाले वचन भी उन कारणों के कारण जीव को स्वरूप का विचार करने के लिए बलवान नहीं होने देते। क्या ज्यादा नुकसान क्या हो गया कि ज्ञानी पुरुष उसको कभी पुण्य योग से मिल जाएगा, प्रगट आत्मस्वरूप बताने वाले वचन भी उसको प्राप्त होगा, इतना पुण्य हो सकता है जैसे जीव को। फिर भी नुकसान क्या होगा कि इन कारणों मौजूद है तीन, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग की रुचि, तो उन कारणों के कारण जीव को स्वरूप का विचार नहीं होगा, ये उपदेश लागू नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पहुंचेगी। वचन सुनने को मिलेगा, ज्ञानी का दर्शन होगा, वचन भी सुनने को मिलेगा, कोई असर नहीं पहुंचेगी। ऐसी एक कमजोर परिस्थिति बन जाएगी, कहते हैं हमने सुना बहुत लेकिन असर नहीं हुई, अंतर में बोध उतरा नहीं। क्यों अंतर में नहीं उतरता है? बोध तो मिल गया, ज्ञानी के वचन मिल गए, अंतर में क्यों नहीं उतरता? ये तीन कारण में से एक भी मौजूद होता है गड़बड़, ये इतनी चलेगी कि बोझ लागू नहीं पड़ेगा, आत्म इतने है। हाँ, ये तीनों कारणों से बचना, बिल्कुल बचना
चाहिए। अंदर में हमारे तो कमजोरी है, बाहर में से मिल जाएगा।
ये तो अब का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है हमारी समाज का, उसमें तो हम असत्संग से घिरे हुए हैं, लोक संज्ञा से भी बाहर में घिरे हुए हैं और अंतर में रोग संज्ञा से घिरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में निकलना बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। तो अब क्या करना चाहिए वो बताते हैं। बात तो सही है, कुसंग से भी ज्यादा घिरे हुए रहते हैं, लेकिन थोड़ा विचिक्षणता से काम लेना है हमें। क्या, क्यों? हम अकेले हैं, सामने बहुत है, असत्संग वाले की संख्या भी ज्यादा है, कुसंगियों की संख्या भी ज्यादा है, तो हम लड़ाई करने जाएंगे अकेले हाथ में, तो थोड़ा अपने को भी तकलीफ होगी, तो थोड़ी विचक्षणता से शांति से काम लेना है। कि जैसे हम हमारा काम चुपके से कर लें और कहीं भी किसी से बाहर में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आए, फ्रिक्शन में घर्षण में नहीं आए, ऐसी एक विचक्षणता वाली कार्य पद्धति को हमें ढूंढना चाहिए, सोच करके अंगीकार करना चाहिए और अपना काम कर लेना चाहिए।
भाई होता क्या है कि कुछ संगी का खराब है परिणाम, ऐसा जान के सत्संग करते हैं तो फिर सत्संग में रुक जाते हैं, फिर असंगी आत्मा को तो पकड़ते नहीं है भाई।
सत्संग में एक बात ऐसी आती है कि तुझे असंग होना है, ये बात सत्संग के अलावा कहीं मिलने वाली नहीं, पर बिना सत्संग कोई असंग हो सकता नहीं, कोई ऐसा तो है इस 609 में वो बात लिया, तो कोई अपने आप चाहे कि मुझे असंग रहना है, मैं एकांत में रहूंगा, तो ये बात मुमुक्ष की भूमिका में उन मार्ग में जाने के लिए साबित हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा बना था, हमारे ग्रुप में ये जो 8-10 लड़के 15 लड़के पीताम्बर वाले आए हैं, जिसमें 2-5 तो दीक्षा लेने वाले थे, पीताम्बरी दीक्षा लेने वाले थे, एक दो मैरिड भी थे, ऐसे पूरे एक ग्रुप आ गया। उसमें एक लड़का बहुत पावरफुल था, ज्ञान का भी क्षोषण बढ़िया तेज और वीरी का क्षोषण भी तेज है। दो चार हमारे संग में रह करके कई बातों उन्होंने समझ लिया कि ठीक बात तो उतनी है, अब तो हम एकांत में साधना करेंगे। क्या हुआ, एकांत में चले गया, संपन्न घराने का लड़का था और कोई तकलीफ नहीं थी कि उनको व्यवसाय करना पड़े, नौकरी करना पड़े, दुकान पर जाना पड़े, वो तो उनके छोटे भाई कर लेता था, वो कोई उसके घर वो सबसे बड़ा था, छोटे वाला जो वो कर लेता था। उन्होंने क्या किया, अपने फ्लैट में एक बड़ा जो कमरा था उसमें पार्टीशन करवा लिया, तो पार्टीशन में कितना पार्टीशन कि जिसमें एक बेड और चलने के लिए 3-4 फीट की जगह रह जाए, उसमें बाथरूम लेटे, उसने अंदर से लॉक कर दिया, मैं बाहर निकलने वाला नहीं, मुझे एकांत में रहना है 23 घंटा, और एक खिड़की में से मुझे 2-3 थाली है खाने का ले लेना, खाना खा के फिर बापा रख दे बाहर। 1.5 साल रहा, इनके जो मित्र परिवार थे वो बोले कि ये तो भाई एकांत में चले गए, मैंने कहीं गड़बड़ हो जाएगी, इनकी वो है तेज लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है, एकांत में रहने की ये भूमिका ही नहीं है। मुमुक्ष असंग दशा मुनिपना में आती है, उसमें कई मुनियों को सत्संग में रहना पड़ता है, आचार्य के गुरु के संग में रहते हैं या दूसरे भावलिंग के संग रहना पड़ता है, कोई जिनकल्पी होता है वो अकेले गुफा में जंगल में चला जाता है अकेला रहता है, ऐसे बहुत कम होते हैं। बाकी इसके पहले टोटली असंगता से रहने की कोई भूमिका है ही नहीं, क्यों कि सम्यक दृष्टि और पंचम गुण स्थान वाले को उपयोग बहुत अंतराल के काल में भीतर आता है, सविकल्प दशा का काल बहुत लंबा है, निर्विकल्प का 0.5 सेकंड के लिए बिजली का धपकार होकर के चला जाता है, करंट आता है प्रदेश प्रदेश में लेकिन वो 0.5 सेकंड के लिए आके चला जाता है, फिर दिनों लगे महीनाओं भी लगे घंटों लगे, सब सब विकल्प दशा है। अब विकल्प उपयोग बार अनिवार्य रूप से जाता है तो उसको विवेक करना पड़ेगा कि उपयोग कहाँ लगाएं हम, वरना आए सत्संग और कुसंग बहुत है, तो उसको सत्शास्त्र और सत्संग दो ही जगह है, तीसरी कोई जगह नहीं है। अगर वो विवेक नहीं करेगा और तो सब गिरी हुई चीज है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा तो वो तीसरी जगह कोई ऐसा प्रश्न, मैं एकांत में चला जाऊंगा, इस आदमी को इतना नुकसान हुआ इतना नुकसान हुआ, टोटली उसका लाइफ फेल हो गया है, 1.5 साल में कल्पना में चढ़ गया, इतना कल्पना में चढ़ गया कि थोड़ा मैडनेस का पार्ट आ गया उसका, बहुत कल्पनाएं होगी, पढ़े भी नहीं ग्रंथ रख लिए सब, लेकिन वाटना छोड़ दिया। वो बहुत अच्छा राइटर है, लिख सकता है बहुत अच्छा, अपने स्वतंत्र के पेपरों में अखबारों में इसका आर्टिकल आता था उस जमाने में, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। थोड़ा इनके आचार्यों के साथ चर्चा करो तो कांडा पकड़े, ये क्या करता है, नहीं चले ऐसा, जिनागर में ऐसा लिखा, ऐसा करे, इतना दिमाग खराब हो गया। तो बात फिर तो बात तो उन पर दिमाग ठिकाने के लगाने के लिए शादी करवाया, फिर ठिकाने नहीं आया और खराब हो गया। अभी मैडनेस इतना हो गया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा, इतना शॉक दिया आज वो बिल्कुल निकम्मा आदमी हो गया है। आता है स्वाध्याय में, वो इनकी वाइफ दोनों आता है, अभी रेगुलर आता है, हम पूछते हैं कैसा लगता है, मैं दिमाग तो बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ विचार चलता नहीं है, प्रमाद है, पड़ा रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, कभी गुरुदेव की कैसेट सुनता है, कभी वो अपना स्वाध्याय की भी कैसेट सुनता है, सुनता हूँ ज्यादा, दिखने का मन होता नहीं है, पढ़ने का मन होता नहीं है, सोता रहता हूँ, थोड़ी ये हो गया है। ऐसे खाना पीना तो अच्छा है घर में, और कोई परिश्रम, बौद्धिक परिश्रम नहीं रहा, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रही, दिमाग बिल्कुल आइडल हो गया। मेरे ब्रदर डॉक्टर, मैंने पूछा कि इसको क्या करे, तो उसको इतना शौक देना पड़ा होगा, इनकी पोजीशन देखते हुए इतना शौक दिया होगा, तो इस जीवन में तो बाहर निकलेगा नहीं इस समय से, तो पूरा मनुष्य भाव उसने खत्म कर दिया। हाँ, एकांत में जाने में क्या हुआ। बहुत तेज लड़का, बहुत दिमाग वाला, इसका लिखावट देखो, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, अंदर के अंदर से इतना उभार, लिखे तो खड़ा रह जाना पड़ा किसी को, क्या लिखता है आदमी, इतना उनका लिखने का स्टाइल, इतने उसके वर्ड, जो
भाषा
का प्रभुत्व बहुत बढ़िया, बिल्कुल निकमा हो गया है ऐसा। ये बात क्रम वाली है, अनुक्रम में भूल हो गया तो स्वच्छंद हो गया, उसने क्या किया, स्वच्छंद किया आपने जीवन में, सत्संग छोड़ दिया, एकांत में चला गया, ये बड़ा बड़ा स्वच्छंद हो गया, उससे पूरा लाइफ खत्म हो गया उसका, ये बात है। तो इसलिए कृपालु देव ने सत्संग का बहुत वजन क्यों दिया है, कि जब हम 15 दिन का उपवास करें, भले अपना टाइफाइड हो जाए, या हम पर्व के दिनों में करें, पालना में क्या लेना पड़ेगा, पालने में मिठाई नहीं चल सकती, वहां 400 घी वाला मैसूर नहीं चल सकता, मैसूर पाक नहीं चलेगा वहां, वहां तो मूंग का पानी लेना पड़ेगा या राब लेनी पड़ेगी आपको क्या, या गन्ने का रस लेना पड़ेगा, वो भी 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, ज्यादा नहीं, फिर आधा घंटे के बाद लो, फिर घंटे के बाद जा लो, ऐसे शाम तक तो ग्रेजुअली आपको आगे बढ़ना, ये क्रम अगर भूल गया, पर घी तो बहुत अच्छा है, दूध तो बहुत अच्छा है, पी लो एक गिलास भर के, मर जाए, इतनी टट्टी लग जाए तो उसी वक्त डायरिया में खत्म हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, सीधा वॉमिट और लेटरिन, डिहाइड्रेशन होकर के खर्च हो जाए। अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज को लेने के लिए योग्यता चाहिए, निसंगता के बिना मोक्ष होने वाला नहीं है, मोक्ष निसंगता बिना होता ही नहीं किसी को, वो श्रेणी लग ही नहीं सके, परिणाम बाहर चले जाए तो श्रेणी नहीं लगे, असंग दशा में ही मोक्ष होता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो क्रम है वो क्रम नहीं समझे तो मर जाए, मोक्ष तो होवे नहीं, संसार बढ़ जाए, यह हालत है। इसलिए कृपालु देव ने हर पत्र में मुमुक्षु को सत्संग क्यों बोला, तो मुमुक्षु के लिए सत्संग एक अमृत है, और ये अनेक आचार्यों ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है सत्संग के लिए, तो सत्संग एक अमृत जैसी चीज है, जहां तक उपयोग बार घूमता है उसको सत्संग रहना, सत्संग में रहना चाहिए, वरना असत्संग से मर जाएगा। बात है। हम तो कोई बोले कि इस ग्रंथ का दूसरा कोई टाइटल आपको ढूंढने को बोले तो क्या देंगे, तो हम बोले कि सत्संग का महत्व क्या है या सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या है, वो दो में से एक टाइटल हम देंगे। दो बात उन्होंने बताई है, सारे ग्रंथ में अगर निषेध निकाल करके निकाले तो सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग मैंने सत्संग क्या चीज है वो बात समझाने का कोशिश किया है, उसका महत्व समझाने का कोशिश किया है। पर वो किया है उतना ही नहीं, अपने भूतकाल के जाति स्मरण के अनेक भवों का ये टोटल है, उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है, कसर नहीं रखी है, लेकिन जब उनको अनुभव हुआ तो सारी लाइन कहाँ से बैठी कैसे बैठी, उनका निषेध निकाल करके दिया है अपने को। उस सिलसिले में एक आर्ग्यूमेंट आती है हमारे पास, आप लोगों नहीं दे रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ। सुगानी जी बहुत एकांत में रहते थे, छः छः घंटा ध्यान में रहते थे, ऐसे पुरुष साधक दशा में बहुत कम होते हैं, जैसे सुगानी जी हुए ऐसे पुरुष साधक दशा में बहुत कम होते हैं। अगर वो जिंदा रहते
एकांत कोई भाई ना आत्मनोसंग
वो असंग दशा में तो रहते थे, बाहर का संत में अपेक्षा तो बाहर का संत चलती वो रहते थे, रह सकते थे, उनकी सामर्थ्य थी ताकत थी। अगर वो जिंदा इस आयुष में रहते तो वो संग में नहीं आते, कुमुनी दशा में आ जाते, इसी भव में वो छठे सातवें स्थान को ले लेते, इतनी ताकत थी उनमें, वो हमने देखा है। तो वो उस ताकत वाले परमात्मा थे, लेकिन खुद रूप कमजोर नहीं थी, वो बात बाहरी परिस्थिति कुछ और थी, भीतर की परिस्थिति कुछ और थी, तो ये होना नामुमकिन था, दूसरी जगह चले गए।
किशोर में कमल की तरह, पानी में कमल की तरह,
रिपब्लिक का एक वचन है उसमें क्या होता है देव लोग में सुनिए दृष्टि कि महास्वरूपवान देवांगनाओं के नृत्य देखते देखते उनको रोम रोम वैराग्य छूटता है। उसके अंदर की परिणति दूसरी है, तो उनको ये भी होता है वहां, फिर वो पूरा होता है वहाँ, उनको रहना इसके पुण्य योग से अनिवार्य होता है, लेकिन भीतर की परिस्थिति दूसरी है, वो नाटक पूरा होता है, वो समझते हैं कि सब नाटक है, इसमें कुछ अपने को फंसना नहीं है, ठीक अपना नया प्रोग्राम बनाता है, सत्संग का बनाता है, या मनुष्य लोक में आकर के महाविदे में जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहाँ चले जाते हैं। देवों को बहुत बड़ी सभा लगती है, मनुष्य की संख्या भगवान के समान में सबसे अल्प है, सबसे ज्यादा त्रियन चौर देवों का है, तो देव बहुत देवलोक का है, तो एक इंद्र आता है तो इतना लाभ लश्कर बहुत है, एक जैसे यहाँ कोई राजा महाराज आएगा तो इसका मंत्री साथ में आएगा, जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके साथ दो चार और मिनिस्टर होते हैं, और भी होते हैं, इसके ऑफिसर्स होते हैं, उसके सचिव होते हैं, उनके ICS ऑफिसर, फिर पट्टा वाले ऐसे करके एक फॉरेन की टूर लगाएगा तो पूरा चार्टर प्लेन करके जाएगा 25-50 आदमी को लेकर के, तो सब दिखा रही है यहाँ तक। ये जो इंद्र आता है तो इनके साथ लाखों करोड़ों देव आते हैं, एक इंद्र के साथ लाखों करोड़ों देव आते हैं, दूसरे अपने आप आने वाले ज्ञानी तो दूसरे, तो ऐसे वो भी पुण्यवंत होते हैं, तो इनका भी ग्रुप आता है, ऐसा होता है, देवों की संख्या समझते हैं बहुत होती है।
मनुष्य कृता त्रियन की संख्या क्या
जी,
मनुष्य कृता त्रियन की संख्या
हाँ
क्या
परिणाम जीव के हल्के परिणाम बहुत होते हैं। अब देखिए इधर उनकी संख्या ज्यादा है, सम्यक दृष्टि भी चिरण ज्यादा है। अभी अभी अधिद युग के बाद समुद्र में असंख्य सम्यक दृष्टि आज मौजूद है। यहाँ कितने होंगे, यहाँ का गिनो, महाविद्य का गिन लो, कुछ भी गिन लो, मनुष्य जितने भी है वो असंख्य है, उसमें से ही ना गिनो होते हैं। और तिरियन सम्यक दृष्टि अभी जो है वो असंख्य है, सम्यक दृष्टि असंख्य है मौजूद, और उसमें कहीं तो पंचम गुण स्थान वाले हैं जो समुद्र में है। इनकी संख्या बहुत है, अनंत है। तिरियन की संख्या कितनी, अनंत। जबकि मनुष्य की संख्या कितनी, संख्यात, असंख्य नहीं, मनुष्य संख्यात होते हैं। इसलिए मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यहां से तो सीधा मोक्ष में चला जाएगा, कोई जा सकता है और तीन बेटी में से नहीं जा सकता। और सबसे परिणाम तिरिंच होने का होता है, देवलोक में से भी तिरिंच में जाता है, मनुष्य में से भी तिरिंच में जाता है, नारकी में से भी तिरिंच में जाता है। क्यों, कि देवलोक में से मनुष्य होने वाले बहुत कम है, जो ज्ञानी है धर्मात्मा है वही मनुष्य होंगे, बाकी होना का संभव नहीं है। तो नारकी हो नहीं सकता देव, अच्छा देव में से नारकी में से देव नहीं हो सकता, मनुष्य होने वाले बहुत कम, क्योंकि वहां तो परिणाम बहुत बिगड़ता है, तो फिर जाता है त्रिवेंद में। पर मनुष्य में से भी मनुष्य होने वाले बहुत कम, देव में इस जमाने में होने वाले बहुत कम, बाकी जा सकता है लेकिन इस जमाने में बहुत कम जाता है, तुम इतना नहीं करता जाएगा तिरिंज में। तो तीनों गति में से तिरिंज में ही जीव ज्यादा जाता है, और यहां से कर्म भोग करके फिर और तीन गति में जाते हैं, या तिरिंज में ही तिरिंज होता है ऐसा, बहुत यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव का विरोध एक महासत्य जी स्थानीय पास बहुत करते थे, लीलाबाई स्वामी नाम तो पर आप लोगों ने सुना होगा, वो स्थानीय वासी है उन्होंने सुना होगा, गुरुदेव का बहुत विरोध करते थे, गुरुदेव संप्रदाय छोड़ा ना, बहुत विरोध करते थे। तो मुरली में एक वनेचंद सेठ थे, नाम सुना होगा इसको, पुराने जमाने वाले को वनेचंद सेठ, गुरी वाला आदमी था, गुरुदेव का बड़ी खम चौकीदार जैसा आदमी था, माका नृत्य वनचंद सेठ से। तो एक दफे उनके पास गया, आदमी प्रतिभा संपन्न और पुण्य संपन्न आदमी था, वो महासती ऐसा नहीं बोला, उनमें नमस्कार तो अपन लोग कोई करें नहीं, एक बहन एक भाई एक बात करने को आया, सत्पुरुष का विरोध कभी नहीं करना, धर्म करना हो अपना माना होगा तो कर लो, जो भी तुमको माना है सामक वासी में तुम कर लो जो करना हो, उसके लिए हम नहीं बोलेंगे कुछ तुमको, लेकिन जिंदगी में कभी कोई सत्पुरुष का विरोध नहीं करना, वरना निगोद का पेट बहुत बड़ा है। क्या बोला एक कण में, एक जमीकंद के एक छोटे से छोटे टुकड़े में, छोटे से पार्टिकल हम तो कहेंगे उसको, असंख्य शरीर, और एक शरीर में अनंत निगोद के जीव, कितने फुटाली में जितने इसे अनंत गुण, बहुत बड़ी संख्या, निकलना मुश्किल हो जाएगा। सत्पुरुष का विरोध कभी नहीं करना, कहने को गेट है उसको फेस टू फेस, मैं तुम्हारा हित की बात करने को आया है, तुमको अच्छा लगे नहीं लगे तुम जानो, मैं तो करुणा से कहने को आया हूं, सत्पुरुष का विरोध कभी नहीं करना किसी का। अब ऐसा निश्चय करना योग्य है, ऐसे तीन कारण होते हुए भी जीव को मुमुक्ष को क्या करना है कि जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है प्रकट है उस पुरुष के बिना अन्य कोई उस आत्मस्वरूप को यथार्थ कहने के योग्य नहीं है। किसी ने कितना भी शास्त्र पढ़ा हो कोई कितना भी विद्वान हो सकता है कोई कहने के योग्य नहीं है। और उस पुरुष से किस पुरुष से आत्मस्वरूप जिसको प्रकट है प्राप्त है उस पुरुष से आत्मा जाने बिना अन्य कोई कल्याण का उपाय नहीं जा इतना निर्धार कर लो बस इतना निश्चय करो फिर आगे की बात बताने की जरूरत नहीं है। आगे के पोस्टकार्ड में उसमें बात बता दी ये नया पोस्टकार्ड शुरू किया है अब ऐसा निश्चित करना योग्य है ऐसा करते उस आत्मारूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रखकर उदासीनता से लोक धर्म संबंधी इस समाज में जिस परिवार में हम रहे हैं उसका जो स्टेज है जो स्तर है उस स्तर कर्म संबंधी अपना हृदय हो परिणाम से छूटा जा सके उसमें से मैं कैसे निवृत्त होऊं इस प्रकार से व्यवहार करना छूटने के लिए व्यवहार करना बंधन में आने के लिए व्यवहार नहीं करना और सब पुरुष के संग की कामना रखकर जिस व्यवहार के करने में जीव का अपनी महत्ता आदि की इच्छा हो वह व्यवहार करना देखा अपनी महत्ता बड़े ऐसा व्यवहार कोई नहीं करना घंटा हुआ अब जो है कोई छत्ता नहीं है
जब तक जीव को ईमानदारी से अपना कल्याण करने की बात नहीं सोचती है तभी उसका ध्यान अप्रयोजन तत्वों में ज्यादा जाता है।
ठीक है वो तो है जिसको भूख नहीं लगी है वो तो कहेंगे कि रोटी में ये कच्ची क्यों रह गई एक साइड क्यों कच्ची रही है ये सब्जी में नमक क्यों ज्यादा है या मर्च मिर्च क्यों है ये लगेगा भूख नहीं लगेगा वो ऐसा ही होगा वो अप्रयोजन भूत में जाएगा अप्रयोजन भूत में जाता है या रुचि रखता है ये इस चीज का सबूत है तो उसको आत्मकल्याण की दरकार
नहीं है।
हम डेढ़ साल पहले कलकत्ता आए तो थोड़ी अप्रयोजन भूत विषय की चर्चा और कुछ बहस भी चल गई थी विषय अप्रयोजन भूत है उसको नहीं लंबाना चाहिए जानकारी का विषय है जिसको कुछ जाना कम जाना विपरीत जाना नहीं जाना सब बराबर इसमें नहीं जाना चाहिए
अप्रयोजन भूत और केवली गम
कोई चर्चा कर गई थी केवली गम में परिणाम अबुद्धिपूर्वक
મુંબઈ વાળા મુમુક્ષુભાઈ ની વાત કરી તો એના નસીબ જ ખરાબ વિચારવાના એને તો તત્વની રૂચિપૂર્વક એને તો કોઈ મિથ્યાત્વ પોષણતા એ અપેક્ષા એટલે એને એનું જીવન બરબાદ થયું
ના ભાવનગરના છે અત્યારે ભાવનગરમાં છે રોજ આવે છે બે હસબન્ડવાઈફ બી આવે છે એના ફાધર બી આવે છે આપણા સ્વાધ્યાયમાં રોજ આવે છે પણ એ શું છે કે સ્વચ્છંદે આગળ વધવામાં આ ભૂલ થઈ જાય છે જલ્દી આગળ વધી જવું એવો એક સ્વચ્છંદ થઈ જાય છે જલ્દી આગળ જવા માટે માર્ગ થોડો વિવેકનો શાંતિનો છે હા જલ્દી કરો તમારો પુરુષાર્થ જરૂર કરતો હોય તો પુરુષાર્થ નું ઠેકાણું હોય ને, જ્ઞાન નું સમજણ નું ઠેકાણું હોય ને, ગમે તેવા પગલા ભરે તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાય. તો આપણે નથી કહેતા ઉતાવળો બે ફેરા વધારે ફરશે, હે ઉતાવળા સો બાવળા ધીરા સો ગંભીર. માર્ગ તો પરમ શાંતિ નો. સંતોષ માની લીધો આપણે, થાય એટલું તો કરીએ છીએ, થાય એટલું કરી પણ ચૂક્યા છીએ. આપણે આપણે દાજુ તો આ જ કર્યું છે ને, ચાલો કાંઈ નહીં, ઠીક છે, આપણે થાય એટલું જી કરો. આમ સંતોષ પકડીને બેસી જાય છે. ઓક્ષણનામાં સંતુષ્ટ થવાનો એક પ્રકાર આવે છે ને, જેટલો પર્યાય બુદ્ધિમાં સંતુષ્ટ થયો એ તો દર્શનમાં વધી દો. ચારિત્રમાં હજી મંદિરે કસાય મંદિરે પણ દર્શનમાં વધી જાય. બહુ જાગૃતિનો વિષય છે.
દેવ મુનિ ને વંદન કરે એ વ્યવહારે ન હોય પણ અભિપ્રાય
હોય. આ ચર્ચા અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં કલકત્તામાં ચાલી રહી છે. ઉપર કે ગુણ સ્થાન વાલે, ઉપર કે સ્તર વાલે, નીચે કે સ્તર વાલે, વ્યવહાર નહીં કરતે હશે. લેકિન ઉસકી નીતિ ક્યા હૈ તો પવિત્રતા વંદનીય હૈ, ધર્મ હૈ વો પૂજનીય હૈ હમે સે. ધર્મ કા ધણી હમેશા પૂજનીય હોતા હૈ. ધર્મી તો ધર્મ કા ધણી હૈ, તો ધર્મ સ્વયં પૂજનીય હૈ. ક્યા કોઈ એસા કહે સકતા હૈ કે ધર્મ અપૂજનીય હૈ? બોલ સકતા હૈ ક્યા? તો પવિત્ર પરિણામ હૈ જીવ કે. ધર્મ તો જીવ કે પવિત્ર પરિણામ હૈ. જબ ધર્મ પૂજનીય હૈ તો ધર્મ કા ધણી અપૂજનીય હૈ, વો બાત તો કોમન સેન્સ, આઉટ ઓફ કોમન સેન્સ હૈ. ક્યા હૈ કે આચાર્યો ને ભી સમ્યક દ્રષ્ટિ કો મુન્નમ ક્યા હૈ, બહુમાન સૂચક શબ્દ મિલતે હૈ, વો કભી હોતા નહીં. જૈસે આચાર્ય હૈ વો ગુરુ શિષ્ય કો મુન્નમ નહીં કરેગા, શિષ્ય આચાર્ય કો મુન્નમ કરકે બેઠેગા. લેકિન નમો લો યે સબ સાહુણ તો વહી આચાર્ય બોલેંગે ગણધર હોતે હુએ ભી, ઓર નમો લો યે સબ સાહુણ ઇસકા શિષ્ય આ જાતા હૈ. તો યા વિરોધાભાસ નહીં, વાત તો કોન્ટ્રાડિક્શન આતી હૈ, વો વાત કોન્ટ્રાડિક્શન વાલી ઇસલિયે નહીં હૈ. તો વ્યવહાર મેં એસા નહીં હોતા, અભિપ્રાય મેં એસા હી રહેતા હૈ, યે અભિપ્રાય વાલી બાત હૈ.
વ્યવહાર વ્યવહારમાં એમ કરવા જઈશ તો
બને જ નહીં,
બને
જ નહીં, એમમાં બને. શિષ્ય ગુરુને વંદન કરીને નીચે બેસે, તો શિષ્ય બેઠા હોય તો ગુરુ વંદન કરીને નીચે બેસે એમ કેમ બને? એવો વ્યવહારમાં બને. રાજા હોય એ રાજા છે, રાજાના પુણ્ય છે. પછી શ્રીમંત શેઠ સાવકાર ગમે એટલો પૈસા વાળો હોય, પણ એ રાજાને શિષ્ટાચારથી માન આપે. રાજા એના સિંહાસન થી ઉભો થઈને એને માન આપે. રાજા એ રાજા છે, વ્યવહારનો વિષય છે. નહીતર જેના ગમમાં વિરોધ આવે. નિયમસારનો 72 નંબરનો શ્લોક છે, એમાં સમ્યક દ્રષ્ટિને એમને વંદન કર્યા છે. પદ્મ પ્રબલધારી દેવ કે મુનિરાજ છે, મહામુનિ છે, આવી દર્શન કરશે. વંદામહે તમ વયમ, અમે એને વંદન કરીએ છીએ. આવી સમ્યક દ્રષ્ટિઓ, એની સુંદર બુદ્ધિ, તાર ભીષણા સુંદર બુદ્ધિવાળા એને બતાવ્યા છે. શબ્દો માલિકું છે, વંદામહે તમને, પછી કોઈ એમ અર્થ કરે કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિનો અર્થ મુનિઓ લેવું. પણ એને તો સુદ્રષ્ટિ એટલો જ શબ્દ વાપરો છે સંસ્કૃતમાં. સુદ્રષ્ટિ એટલો શબ્દ વાપરો, સમ્યક દ્રષ્ટિ શબ્દ નથી વાપરો. સુદ્રષ્ટિ એવો એટલો જ શબ્દ વાપરો છે.
સ્પષ્ટ વચન લિખે હે ये बंधन द्रव्य बंधन की कोटि में आ जाता है. ये अभिप्राय करते कि भाव
द्रव्य बंधन में बहुत से स्टेज है. विकल्प भी द्रव्य बंधन है. विकल्प तो होते ही है. जैसे
तो विकल्प
वहां गए लोग सब सावणों का विकल्प गणधर देव को आया, तो द्रव्य बंधन हुआ का भाव बंधन हुआ, द्रव्य बंधन हुआ.
यहाँ तो इससे आगे चलकर विकल्पों को प्रसिद्ध किया.
द्रव्य बंधन का पहला स्टेज विकल्प है, दूसरा स्टेज वाणी है, तीसरा स्टेज ऐसा बंधन काय से बंधन करना हो तो मन वचन और काय, तीन स्टेज से ये द्रव्य बंधन होता है. तो पहला स्टेज मन में आता है, वो स्टेज आगे बढ़ता है तो वचन में आता है, और आगे बढ़ता है तो फिर काय में आता है. तो वो काय वाला नहीं होता है, मन वचन वाला होता है. ऐसी बात है. બાકી તેનું દ્રવ્યબંધન હે, કેમકે ભાવ તો આત્મા કે શુદ્ધ પરિણામ હે, વહી ભાવ આપણા જો ભાવ બંધન હે તો આપણા પરિણામ સ્વરૂપ મેં જો નમન કરતા હૈ ડર જતા હૈ વહી ભાવ બંધન હૈ. બાકી તો સબ દ્રવ્યબંધન હો જાતા.
આશ્રય લેવો, અવલંબન લેવું, તો શ્રદ્ધાનું કાર્ય છે કે જ્ઞાનનું?
આશ્રય ધર્મ સભી ગુણો મેં હૈ, અનંત સભી ગુણો મુખ્યપણે શ્રદ્ધા કરશે.
શ્રદ્ધા તો દર્શન પહેલા શુદ્ધ થઈ નથી, તો શ્રદ્ધામાં કાર્ય થાય.
જ્ઞાનમાં સભ્ય હોય તો જ્ઞાનમાં તો હોય, અવલંબન લેવાનો ધર્મ બંને પાછા.
લક્ષ્ય અને અવલંબન બે માં શું ફરક? લક્ષ્ય જ્ઞાન માં આવે ને?
ના, લક્ષ્ય જ્ઞાન માં આવે. એનું જેનું લક્ષ આવે એનું જ્ઞાન અવલંબન કરે.
અચ્છા,
લક્ષ્ય જ્ઞાન કા પર્યાય. જિસકા જ્ઞાન મેં લક્ષ્ય હો ઉસકા અવલંબન ધ્યાન કરેગા, ઉસકો મુખ્ય કરેગા, ઉસકા અવલંબન કરેગા. દોનો બાત
બે અલગ અલગ ગુણનું કાર્ય છે, પણ એક રૂપ
અપના અપના કાર્ય અપના અપના ગુણ કરતા. શ્રદ્ધા પ્રગટ હોગી તો શ્રદ્ધા અવલંબન કરેગા આત્મા કા, ઉસકો તો દૂસરા કોઈ હૈ નહીં. મુખ્ય ગુણ કરને કાંઈ સવાલ નહીં. જ્ઞાન મેં મુખ્ય ગુણ હોતા હૈ, શ્રદ્ધા મેં તો મુખ્ય ગુણ હોતા હૈ. તો એક પરમાત્મા મિલ ગયા તો ચિપક ગઈ, તો ચિપક ગઈ. એટલે કહેતા કે શ્રદ્ધા તો અંધી હોતી હૈ
ભાઈ. શ્રદ્ધાની જે પર્યાય દ્રવ્યનો આશરો લે છે એ જ પર્યાય નિર્મળ થઈ જાય છે. શ્રદ્ધાની પર્યાય જે દ્રવ્યનો આશરો લે છે એ જ નિર્મળ થઈ જાય છે.
તો નિર્મળ હોવે તબ તો આશ્રય હોય, મલિન હોવે તો ઉલટી જાવે.
બરાબર.
શ્રદ્ધા કે પર્યાય મલિન હોય તો ઉલટી જાવે, નિર્મળ હોવે તો સુલટી જાવે. સમર્થ છે. બીજા આ વાત કરશે પણ એ કહેવા માટે સમર્થ નથી ને કે છે, અસમર્થ છે ને કે છે. એમ કે છે એકદમ જાણવી છે, સંબંધ જાણવી. નિર્ગ્રંથ પ્રવચન આચાર્ય નું પહેલું સૂત્ર છે, મૂળ આચારણનું આ પહેલું સૂત્ર છે. સ્વતંત્રમાં એ રાખ્યું છે, એમ જ રાખ્યું છે. એ આચારણનું પહેલું સૂત્ર છે. બાર અંગમાં જે આચારણ છે એનું આ પહેલું સૂત્ર છે. એકદમ જાણવી, જાણવી એકને જાણ, પછી કેટલું કેટલું જાણવું એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. निश्चयाभास के निषेध के लिए जब ऐसा कहने में आता है कि सुनने का भाव तो गंधर्व को भी आता है, अध्ययन का भाव तो मुनियों को भी आता है आदि कथन आता है, तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है. प्रश्न क्या है कि अनादि से निश्चय स्वरूप की रुचि नहीं हुई. निश्चय स्वरूप की रुचि नहीं होने से राग की रुचि रह गई. और राग को पुष्टि करने वाला क्या कहेगा? देखिए, अध्ययन का शास्त्र अध्ययन तो बड़े बड़े मुनि करते हैं, गंधर्व भी करते हैं, और तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए गंधर्व भी वहां जाते हैं. बात तो प्रसिद्ध है, लेकिन वो बात सुनती भी ली जाती है, उल्टी भी ली जाती है. अगर हमारे व्यवहार की रुचि के पोषण के लिए वो बात है तो जहर है. वो बात तो निश्चयाभास का निषेध करने के लिए कही थी, लेकिन व्यवहार की रुचि पुष्ट करने के लिए नहीं कही थी. तो निश्चयाभास को निकालने के लिए तो वो बात अमृत है, लेकिन व्यवहार की रुचि पोषने के लिए वही बात जहर है. एक ही जगह से अमृत निकलता है, एक ही जगह से जहर निकलता है. इसलिए हम दैनिक स्वाध्याय करते हैं तो हर पल में ऐसा बात विचार करते हैं. तो देखिए, अपना स्वाध्याय का तो वो मुद्दा चलता है, तो यहाँ से अमृत कैसा निकलता है और यहाँ से जहर कैसे निकलेगा, तो दोनों पहले की चर्चा हम कर लेते हैं. एक एक सिद्धांत पर, कोई भी स्तर का सिद्धांत हो, वहां से दो बात निकल सकती है. अमृत भी निकल सकता है, ऐसे सत्संग है वो अमृत है मुमुक्षु के लिए। लेकिन असंग का, असंग के लिए सत्संग करना है, वो असंग को ही गौण कर दे, तो हम ये पूछते हैं कि तुमने सत्संग किया किस लिए, ये तो बताओ। सत्संग को संग करने के लिए नहीं होता है, असंग होने के लिए सत्संग होता है। अगर असंग का हमारा इरादा और हमारा ध्येय हमारा लक्ष्य छूट गया तो सत्संग किया ही नहीं है, असत्संग किया है, इसने सत्संग ही नहीं किया।
आपकी बात सामर्थ्य वक्त पर स्वरूप जो भी हो सत्संग है ना आपको,
हाँ असंग होने के लिए ही सत्संग करना है। तो आगे आगे करके एक बुलाया है, संग करना असंग होने के लिए एक बोला है बात नहीं। तो अज्ञानी को व्यवहार पक्ष की पुष्टि हो जाती है और निश्चयाभास हो जाने का डर भय लगता है, इसलिए निश्चय पर जोर दे सकता नहीं है और व्यवहार में तमीज जाते हैं, राग में आदर भाव रह जाता है, जो अनधिकार था वो पुष्ट हो गया, इससे ज्यादा कोई क्या गलती करता है। जोर तो निश्चय पर देना और व्यवहार बराबर करते रहना, ये निश्चयाभास होगा हजार आभास होगा और हो जाएगा एक भी आभास। भारत तरवार की सहोली दोहली चौदमा जिन तीन शरण सेवा, ऐसी बात है ये। कहीं भी थोड़ा भी यथार्थता से आगे पीछे चला गया उस मार्ग में चला जाएगा, ग्रहित हो जाएगा। चौदह तीर्थंकर का पद लिखा है आनंद बिंदे, धार तरवार सोहली जलदोली चौदमा दिन तनी शरण सेवा, धार पर देखता धार पर नाचता देखबा जिगरा सेवना धार पर रहने देवा। कोई तरवार के धार पर भी नृत्य कर सकता है, वो कला भी हो सकती है, लेकिन जिन मार्ग की कला तो इससे भी सूक्ष्म है, उससे भी ये कला थोड़ी और सूक्ष्म है और दुर्लभ है, वो सुलभ है। तलवार की धार पर नृत्य करना सुलभ है, जिन मार्ग में आप आना उतना सुलभ नहीं है, देव भी नहीं रह सकता इस मार्ग पर। सेवा का सेवना मैंने सेवा कर दी, स्वरूप की सेवन करना, देव भी समर्थ नहीं है, बड़े बड़े लोग जो समर्थ में देव नहीं। વધારે તો કોને સમજવું પડે છે, વધારે ઊંધા લાકડા નાખ્યા
ખરેખર તો એવું જ છે,
એને બહુ ઊંધા લાકડા ન નાખ્યા, વધારે કઈ સમજવાનું ખૂબ એક્સ પરમાર્થી કૃષ્ણ સમજવું પાત્રતાનો મેઇન પોઈન્ટ સૌથી બેસ્ટ, બીજો અંતર અવલોકન, આ બે પકડ પડી લઈએ તો ત્રીજાની જરૂર નહીં પડે, પછી આગળ ઓટોમેટિક આવશે
સ્વાધ્યાય
दर्शन अभी पूछे तो सबको लग रहा है प्रश्न बचता
ज्ञान और वो जो वेतन की जो बात चली थी ना कल ज्ञान और जो वेतन की
उसमें समस्या क्या है
जो ज्ञान वेतन वाला जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान होता
है वो परवेदन का ज्ञान हाँ वो चर्चा चली थी खड़े खड़े कि पर को जानने वाला ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते हैं लेकिन पर को वेदने वाला को वेदने वाला ज्ञान को अक्सर ही मिथ्या ज्ञान कहना चाहिए जबकि पर को जानने वाला पर से एकत्व करेगा जान के वक्त तो वो मिथ्यात्व है मिथ्या ज्ञान है अगर भिन्न रहता है तो वो सम्यक है लेकिन उसमें अनेकांत है यानी दो दो पहलू है लेकिन उधर तो दो जगह है ये नहीं ऐसा तो स्पष्टीकरण
चाहते हैं वेदन जो है वो तो अनुभव से आता है वेदन जो है वो अनुभव का प्रकार है
हाँ
तो पर का तो अनुभव हम कर ही नहीं सकते हैं तो पर का वेदन कहाँ से होगा
नहीं तो लेकिन हमारे गर्व को हमकी पीड़ा हुई क्या करते हैं कि हमको दर्द हुआ तो किसका वेदन किया शरीर का शरीर की प्रिया है वो जो असाता वेदनी है वो तो शरीर की प्रिया है कर्म परमाणु भी असाता वेदनी प्रकृति भी परमाणु जड़ है और शरीर भी नो कर्म भी जड़ है ये कर्म नो कर्म दोनों तो जीव नहीं है फिर भी हमको बीमारी हुई हमको पीड़ा हुई ये मिथ्या ज्ञान है वो पर वेदन का अध्यास वो मिथ्या ज्ञान है तो उस वो किसी हालत में सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता लेकिन केवल ज्ञान सम्यक ज्ञान है और चतुर्थ गुण स्थान से स्वतंत्र प्रकाशक है वो तो सम्यक ज्ञान है पर पदार्थ को जानता है उसको ज्ञान में मिथ्या तो नहीं होता जानता है भिन्न रह जाता है तो मिथ्या तो नहीं होता लेकिन सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो पर वेदन कर सकता नहीं तो सम्यक दृष्टि के तो ज्ञान ज्ञान का वेदन में रहा वो तो हाँ। तो स्वसंवेदन उसकी तो धारा चलती है सर्वेदन में होगा जाता नहीं उसको अध्यास होता नहीं अज्ञानी को परवेदन होता है वो मिथ्या ज्ञान है अक्सर मिथ्या ज्ञान है
हाँ
ठीक है पूरी हिंदी में नहीं जानता अधूरी हिंदी चलती है हमारे तो है ही वही कहने का मेरा अभिप्राय तो
अक्सर में तो ये हो जाता ना कि परसेंटेज थोड़ा उधर भी
है अक्सर मैंने सेंट परसेंट ऐसा बोल हाँ उसी को अक्सर कहते हैं मैंने खचित हमारे गुजराती में खचित शब्द लगता है
बीमारी में ज्ञानी जो वेदन करते हैं बीमारी का जो ज्ञानी वेदन करते हैं उनका वो वेदन वाला ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान है
ज्ञानी बीमारी का वेदन करते ही नहीं है ये आपका प्रश्न ही स्थान में है वो तो करते ही नहीं है कभी उनको ज्ञान का ही वेदन रहता है सिवा ज्ञान का वेदन उनको होता ही नहीं वो करते भी और अज्ञानी को भी सिवा ज्ञान का ही वेदन होता ही नहीं लेकिन वो करता है वो मिथ्या है वो बात है इसको भी नहीं होता है वो सकता ही नहीं फिर भी करता है वो अभ्यास है मिथ्या है भ्रांति है सब कुछ हुई है ऐसा जानने में नहीं आता वेदन और जानने में वो अंतर है जानने में ऐसा नहीं होता जानने में ये ना एक शंकर दोष होता है मिथ्यात्व में वहां तक ये गड़बड़ है लेकिन समय ज्ञान में होने के बाद ये गड़बड़ नहीं होती ऐसा नहीं होता
जानना उल्टा होता
है
चोट लगता है तो चीखता है चोट लगने से ज्ञानी भी चीखते
हैं
उस समय में भी वेदन नहीं है
चोट मैंने क्या
तलवार
हाँ हाँ
ज्ञानी को मारा तलवार
हाँ हाँ
चीख निकला
आशीष घूम पड़ेंगे, रोने लगेंगे, सब कुछ होगा, फिर भी अंदर में वेदन नहीं करता। ये नारकी में क्या होता है? नारकी में वही होता है सम्यक दृष्टि, नारकी पैदा होता है ना। तो यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर गया, सैनिक महाराजा गया, पहले तीर्थ में आदिनाथ भगवान है हमारे आने वाले छोटे से, वहाँ पैदा होने में उतना दर्द होता है वहाँ, क्योंकि भीतर में उसका आकार बड़ा है, जैसे वो जग होता है पानी का, उसका मुंह जो है बहुत छोटा है, अंदर में पैदा हो गया, बाहर उसको खींच के निकालता है, दूसरा द्वार के उसको खींच के निकालता है, वो तो देख नहीं सके, सुन भी नहीं सके, उसकी आवाज इतनी आती है दर्द के, तो सुनने से कोई मर जाए, देखने से भी मर जाए, यहाँ तो यहाँ वाला तो, लेकिन भीतर में भिन्न रहता है, वही समय दृष्टि उधर होता है, भीतर में सुन यहाँ भी रोता है, यहाँ भी कोई परिवार का जन्म का कोई जैसा हो जाता है, माता जी पिताजी को गुजर जाता है, डर तो रोना आता है, रोता डर से भी रो सकता है। गति पहला बांधी हो, गति निकाचित है, गति न करे, आयुष्य निकाचित नहीं, हमारे पीरियड बदलाई जाए, हम तो बहुत मोटो साथी नाते मुनिराज न अपराधी रहो भावली संयुक्त दर्शन हुआ, पहली नाट में
एक मुनिराज नो अपराध क्यों, एक नानी नो अपराध क्यों, बुधू बराबर था भाई,
बहुत मोटा मुनिराज नो अपराध, हम तो मोटो छे पण अभिप्राय की दृष्टि है तो एक सब तो
तीनों काल के ज्ञानियों का मार्ग का शासक सबका एक साथ
देव गुरु शास्त्र એટલે સિદ્ધાંત અને સત્પુરુષ ચાર ઇસ્યુમાંથી કોઈ ઇસ્યુ ઉભો થાય એટલે મુમુક્ષુ એ જિજ્ઞાસા માં રહી લેવું, કોઈ દિવસ મત આપીને અનુમોદના ન કરવી, આમ થાય કે આમ ન થાય કઈ મને ખબર નથી પડતી, નાનીને પૂછી લઉં, હું નથી સમજતો, જિજ્ઞાસામાં જ રહી જવું, બંધ બંધન પડતું બચી જાય, નહીં ક્યાં મરી જાય કેવું મુશ્કેલ છે, બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે સિદ્ધાંતમાં કાચો પાકો હોય એટલે શાસ્ત્રના વાદ વિવાદમાં કોઈની સાથે મુમુક્ષ હોય જવું નહીં, ખંડન બંધનમાં કોઈ બી મુમુક્ષ હોય પડવું નહીં, હું હાચન ખોટો હોય કરવું નહીં, કાંઈ પણ પ્રતિષ્ઠા હોય પછી ભાવે તીર્થંકરની હોય વર્તમાન તીર્થંકરની કાંઈ બી હોય, આપણે ત્યાં બધું થઈ ગયું છે એટલે દાખલો આપીશું, પડવું નહીં, નામીનો આદર અનાદર કાંઈ બીજું થતું હોય તો મત આપતા પહેલા નાનીને પહેલા પૂછી લેવું અને એની ઘર જિજ્ઞાસા મારે જલ્દી ક્યાંય મત આપી દેવો નહીં, આની કોઈ ધાજા છે માટે એની કોઈ જવું એ ન આમાં ન હોય, આની કોઈ એક જ જણ છે એ ન ચાલે, આમાં એવું નથી ચાલતું, અને મેજોરિટીનું કામ નહીં, નહીંતર આ ચાર જગ્યાએ અપરાધ થાય છે, એ સંસારમાં કોઈ પણ પાપ કરતા અપરાધ ન થાય એથી મોટો અપરાધ થાય છે, સપ્ત વ્યસનથી મોટું પાપ છે, એટલું બધું ભયંકર છે, અનંત સંસારનું કારણ
ઘટનાઓ
ઘટે છે, ઉદય તો આવે જ બધા, ઉદય તો આવવાના, બહુ જ સાવધાની રાખવી પડે, ભૂલ ના થાય, નફો ન થાય કઈ નહીં, નુકસાન ન થાય એની પહેલી સાવધાની રાખવી
પડે,
નીતા તમે ધર્મના ક્ષેત્રમાં કરો છો એટલે તમને ઉદય ધર્મ ધાર્મિક ઇસ્યુના જ ઉભા થવાના છે, બહુ સાવધાની રાખવી, બહુ જ સાવધાની રાખવી,